माने उन्होंने ये जो उपदेश दिया है उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहा। आहार दो तो भी ठीक है, न दो तो भी ठीक है, लेकिन ये बात तो तुम्हारे लिए हितकारी होगी। खैर उसकी महिमा ही निराली है। अभी पिछले वर्ष उत्तम क्षमादि पर जो हमारे उपदेश हुए थे, बिल्कुल अलग प्रकार की बातें थी उसमें। कि उत्तम क्षमादिक जो है वो मुनि धर्म है, और मुनि धर्म में भी आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने तो 10 भेद किए मुनि धर्म के। इसमें भी वही है 10 भेद कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। गृहस्थों के 11 हैं, 11 प्रतिमा रूप, और मुनियों के 10 धर्म रूप 10 भेद हैं। तो उसमें इनने ये बताया, समितिषु प्रवर्तमानस्य प्रमाद परिहारार्थ धर्म इति वचनम् उच्यते। यानी जो 5 समितियों का पालन करने वाले मुनि हैं उनसे प्रमाद न हो जाए इसलिए इन धर्मों का उपदेश है, 10 धर्मों का। अभी तो क्या हो गया कि 10 धर्मों पर कोई भी आकर क्षमा के ऊपर भाषण दे जाता, वो कोई उपदेश नहीं देता, वो भाषण इधर उधर से संग्रह करके क्षमा के बारे में 10-20 बातें सुना देगा पब्लिक को, हो गया उत्तम क्षमा। लेकिन वो नहीं है उत्तम क्षमा धर्म, कोई दूसरी चीज है। उत्तम संयम भी कोई अलग ही चीज है, और उत्तम सत्य की बात जब करते हैं तो कहां से कहां परम सत्य तक के ले जाते हैं बिल्कुल, पर वो चीज है ही नहीं, वो सब विषयांतर है। आप शब्द को मत पकड़ो क्षमा को, उस प्रसंग को देखो जहां उत्तम क्षमा शब्द लिखा हुआ है, वो उत्तम क्षमा किसके लिए। हाँ, फिर गृहस्थ जब उसका पर्व मना रहा है तो गृहस्थ को अपने जीवन में यथासंभव क्षमा धारण करने का प्रयास करना चाहिए। यह उपदेश बाद का उपदेश है, पहला वर्णन क्या, और उसमें सबसे खास बात जो हम अभी बताना चाह रहे थे जिस कारण से हमें जिस स्मरण में आई थी वो ये थी, उत्तम त्याग। उत्तम त्याग क्या है? बोली लगाना, बुरा मत मानना आप, बहुत हम अच्छे से बोल रहे हैं इसको, हमारे अंदर कोई भी ऐसे नाराजी वाली बात नहीं, बिल्कुल पूर्ण वात्सल्य के साथ हम बता रहे हैं बात। वो जो बोली लगाना आदि जो दान का कार्यक्रम होता है वो उत्तम त्याग में नहीं है। उत्तम त्याग वो है कि साधु जो मुट्ठी भर भोजन लेकर आपके घर से आपके लिए अमृत का समुद्र परोस जाते हैं वो उत्तम त्याग है। संयतस्य योग्यम ज्ञानादि दानम त्याग, परिभाषा देख लेना आप सर्वार्थ सिद्धि में। संयतस्य योग्यम यानी संयमी जो चीज दे सकते हैं, संयमी आपको स्वर्ण मुद्राएं नहीं दे सकते। धनपाल सेठ ने धन्य कुमार को दी थी 100, लेकिन साधु आपको नहीं दे सकते। तो संयतस्य योग्यम, संयमी के योग्य क्या है, वो क्या दे सकते हैं? तो ज्ञानादिक दे सकते हैं, तो वो उनका महान त्याग है। त्याग इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना समय आपके हित में लगाया। उन्होंने दीक्षा क्यों ली थी? मोक्ष पाने के लिए। आपके लिए ली थी क्या दीक्षा? साधु दीक्षा किसके लिए लेते हैं? अपने रिश्तेदारों का कल्याण करने के लिए, या फिर जो चौमासा करा रहे हैं उनका कल्याण करने के लिए? नहीं, चौमासा भी साधु का व्यक्तिगत एक अंश है अपनी चर्या का, उसमें जनता लाभ ले ले ये एक बाद की बात है, और जनता और लोगों को भी लाभ दे ये भी एक अलग बात है। लेकिन साधु जो अपनी साधना और अनुभव से जो चीज हासिल करते हैं, साधु जो कुछ देते हैं दुनिया को, वो कोई दूसरा दे नहीं सकता। और इसका अनुभव, इसका अनुमान सब लोग न लगा सके अलग बात है, क्योंकि बहुत लोगों से बहुत सी बातें आप सुन चुके हैं, इसलिए आप वो अंदाज नहीं लगा पाते कई बार कि ये जो बात कह रहे हैं इसमें और उसमें क्या फर्क है। पर जो समझदार है वो उसका अनुमान लगा सकते हैं। एक बार की बात है कि वर्षायोग चल रहा था अभी महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा के और आगे पुणे के पास एक स्थान है, वहाँ पर चौमासा था। तो वहाँ पर एक बहुत बड़े प्रवक्ता आए थे, और वो देश विदेश में जा कर के व्याख्यान देते हैं, और स्पेशली उनको इनवाइट किया जाता है कि आप आइए और जैनिज्म के बारे में, विज्ञान के बारे में और शाकाहार के बारे में बोलिए। विश्व प्रसिद्ध थे वो पर्यूषण के व्याख्यानों में आए, और फिर उन व्याख्यानों को सुन करके बाद में मिले वो हमसे और बोलते हैं कि महाराज मैं भी बहुत कुछ बोलता हूँ इन विषयों पर, लेकिन जो बात आपने बोली है मुझे आज ऐसा लगता है कि वो बात मैं नहीं बोल सकता, वो बात वही बोल सकता है जिसने जीवन में साधना की है, तपस्या की है, वो बात बिना तपस्या के बोली ही नहीं जा सकती, ऐसी चीज़ आपके अंदर से निकलती है। अब ये हम अपना उदाहरण देकर के कोई ऐसी बड़ाई मान बड़ाई नहीं चाहते, ये सिर्फ एक मतलब आचार्य जी को ले लो, आप आचार्य शांति सागर महाराज जी को ले लो, किसी को भी ले लो, कोई भी जो साधना मार्ग में अनुभव की तरफ गौर करने वाले साधक हैं, कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो ज्ञानार्जन की तरफ ज़्यादा रुचि रखते हैं, कुछ व्याकरण में रुचि रखते हैं, कुछ साहित्य में रुचि रखते हैं, कुछ दर्शन में रुचि रखते हैं, कुछ अध्यात्म में रुचि रखते हैं, कुछ सिद्धांत में रुचि रखते हैं, अलग अलग विषय बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो विशुद्धि की बढ़ोतरी होती है साधना में, हमारी भावना ये है कि हर साधक की रुचि होनी चाहिए उसमें कि अंदर की पवित्रता कैसे बढ़े, क्योंकि वर्ष बीतने से साधुता का विकास नहीं होता। जैसे मान लो 20 साल हो गए किसी को दीक्षा लिए, उसकी साधुता बढ़ गई ऐसा नियम नहीं है, लेकिन जिसके अंदर की पवित्रता बढ़ जाती है, वास्तव में साधना में उन्नति उसी का नाम है कि दिन प्रतिदिन पवित्रता बढ़ते जाए अंदर में, दृष्टि भी पवित्र होती चली जाए, वाणी में भी पवित्रता बढ़ती जाए, अंदर की भावनाएं भी पवित्र होते जाए, बस उस पवित्रता की वृद्धि का नाम ही धर्म वृद्धि है। आत्मा की पवित्रता के सिवाय धर्म कोई और वस्तु नहीं है। तो उत्तम त्याग में वो कहीं से कहीं प्रकरण चलता है, लेकिन ठीक है, जिस चीज से जनता का हित हो उसका अपन विरोध नहीं करते, वो कथनचित किसी अपेक्षा क्वचित किसी स्थान पर आवश्यक होता है, लेकिन त्याग का मूल स्वरूप इन 10 धर्मों के दिन प्रस्तुत होना चाहिए। उत्तम क्षमा क्या चीज है इस पर भी कुछ व्याख्यान होना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि तुम क्रोध मत करो, यहाँ तक उत्तम क्षमा की सीमा नहीं है, उत्तम क्षमा बहुत बड़ी चीज़ है। उत्तम मार्दव क्या है, मान मत करो, मैंने तो मान करना छोड़ दिया, ये भी मान है, ये भी मान है, ये कषाएं बहुत बारीक शत्रु है। तो उत्तम त्याग में ये बात है कि साधु वो चीज़ देते हैं दुनिया को जो कोई दूसरा नहीं दे सकता। फिर कभी कभी क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा एक ऐसा कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं हमारे हैं महाराज, तो वो बात जो है सुधा सागर महाराज ने कहा था कि अगर कोई भगवान को अपना समझे तो निश्चित ही उसने अपना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। और एक व्यक्ति को उन्होंने कायोत्सर कराया, उनके बहुत संकट चल रहे थे जीवन में, खूब कोर्ट केसेस कचहरियाँ वगैरह सब चालू थी, तो महाराज जी ने उनको कहा कि इधर बैठ कायोत्सर करो, क्या कि जो इतनी बढ़िया तुमने जो स्थापना करवाई है अब ये मानना छोड़ दो कि ये हमारे हैं। प्रतिष्ठा के पहले तुम्हारे थे, जब तुम पैसे देकर खरीद कर लाए थे उस आकृति को, उस मूर्ति को, उस प्रतिमा को, लेकिन प्रतिष्ठा के बाद ये देवों के द्वारा अर्चनीय जगत पूज्य हो गए हैं, ये जिनेंद्र भगवान स्थापित हो गए हैं, इसलिए इन जिनेंद्र भगवान की स्थापना को तुम अपने तक सीमित मत करो, असीम को सीमित करने से ही हानि होती है। रिचर्ड बाक ने लिखा है कि द ओरिजिनल सिन इज टू लिमिट द इज, असीम को सीमित करना ही वास्तविक पाप है। उनने जैसे ही ये छोड़ दिया कि अब मैं नहीं ऐसा नहीं सोचूंगा कि ये मेरे हैं, मतलब अपने साथ नहीं जोड़ूंगा, ठीक है मेरे सहयोग से हो गया ये काम, लेकिन अब ये त्रिलोकीनाथ है, अब ये मेरे तक सीमित नहीं है। बस उस दिन से उनके संकट सुलझना प्रारंभ हुए, ठीक ठाक हो गया सब काम। तो इसी प्रकार ये तो देव की बात हुई, शास्त्र का भी वही है और गुरु का भी वही है। गुरु को भी सीमित मत बनाइए आप, अगर गुरु असीम हो जाए तो फिर सारे विश्व को लाभ पहुंच सकता है। अभी हमने सुना था कि क्षमा सागर महाराज श्री के उपदेशों में 25% जैनेतर लोग उपदेश सुनते हैं, कुछ उनको मिलता होगा तभी तो सुनते हैं। और पंडित जगन मोहन लाल जी ने अजमेर की दरगाह में जाकर के व्याख्यान दिया, 5000 मुसलमान थे वहां, तो उन्होंने इतना सत्कार किया उनका, बोले कि आपने तो बिल्कुल हमारे मजहब की बात कह दी, बोले यही होना चाहिए, बोले अल्लाह की खल्तनत में किसी की तबाही नहीं होनी चाहिए। अब वो इतने एक्सपर्ट थे बोलने में कि बिल्कुल प्रभावशाली व्याख्यान हो गया उनका, यानी कोई जीव किसी को पीड़ा ना पहुंचाए, क्योंकि पीड़ा पहुंचाने से तबाही होती है। बात कौन सी कही उनने, बात मूल बात कही लेकिन उनकी भाषा में कही, कितना असर हो गया, प्रभावना हो गई। तो अगर प्रभावना विस्तृत होती है, अगर सीमित होती है तो क्या होता है कि उतनी सीमा में एक एकता जैसी होती है, और अगर असीम हो जाए प्रभावना तो आप विश्वास मानिए कि गिरनार की समस्या भी दूर हो सकती है। अगर क्षमा सागर महाराज जैसे कोई साधु आ जाए और फिर वहां पर जूनागढ़ में उनके व्याख्यान हो जाए खुले, तो क्या मजाल है कि वो उनके हृदय न पसीजे। कोई ऐसा असरदार काम भी होना चाहिए समाज की तरफ से। कभी ये नहीं कहते हम कि हमेशा ऐसा करते रहो आप, लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ भी हो जाए जिससे सब लाभान्वित हो, और फिर क्या होगा कि उससे सबकी सद्भावना बनेगी। 3-4 जगह ऐसे विवाद हुए हैं जैन और जैनेतरों में, कि जबलपुर का तो विवाद इतना प्रचंड विवाद था कि उन्होंने आदिनाथ भगवान की मूर्ति तोड़ डाली, और सहजानंद वर्णी जी वहां चौमासा कर रहे थे, उनको चौमासा छोड़ना पड़ा बीच में जबलपुर में, इतनी बड़ी घटना हो गई थी। लेकिन उसके बाद फिर देखो बात कैसे सुलझी, बात से ही सुलझी और बात से ही बिगड़ी थी बात। एक विशेषांक निकाला उन्होंने, रामायण विशेषांक किसी जैन संपादक ने, और उसमें कुछ शब्द ऐसे लिख दिए जो अजैनों को खटकने वाले थे, और वो इतने खटक गए कि पंडित नाथुराम व्यास एक ब्राह्मण विद्वान थे, उन्होंने रैली निकाली, और रैली निकाल करके ऐसा भाषण दिया उन्होंने कि जैन और हिंदुओं में राइट्स की स्थिति आ गई, मारामारी की, और आदिनाथ भगवान की मूर्ति खंडित कर दी उन्होंने। अब इसके बाद क्या हुआ कि एक विद्वान को वहां पर आना पड़ा ऐसी भीषण स्थिति में, और फिर उन्होंने फिर जाहिर सभा में दूसरा व्याख्यान दिया। एक व्याख्यान मतलब वो तो एक तो किताब से हानि हो गई थी जनता को, अब उनने क्या किया कि वचनों से उसका कैसा समाधान किया, उनने बोला कि ये आदिनाथ प्रभु हिंदू पुराणों की मान्यता के अनुसार अमुक नंबर के अवतार है, हो सकता है 11 नंबर के या कौन से नंबर के, तो ये हम सब के आराध्य हैं, सब भारतवासियों को इन अवतारों के प्रति हार्दिक आस्था है। अब देखिए यहां से बात शुरू हुई, तो पहले तो उनको एकदम झटका लगा कि अरे हमने ये क्या कर डाला उतावली में, गलती किसी ने की थी और फिर हमने गुस्सा कहीं और उतार दिया, हमने अपने ही अवतार को खंडित कर डाला। वो जिसने प्रहार किया था प्रतिमा के ऊपर वो आ गया वहां पर, और आंखों में आंसू है, पूरा शरीर कांप रहा है, और कान पकड़कर ऐसे हाथ जोड़कर बोलता है कि मुझे प्रायश्चित चाहिए, मुझे प्रायश्चित चाहिए, प्रायश्चित चाहिए, क्या करूं मैं। देखो कितनी बड़ी बात, माने एक वाणी ऐसी होती है जिससे मूर्ति टूट जाती है, और दूसरी वाणी ऐसी होती है जिससे पुनः प्रतिष्ठा, वो पुनः प्रतिष्ठा में सब उनने सहयोग दिया। और फिर से उनने बोला कि तब तक हम भात नहीं लेंगे, शक्कर नहीं लेंगे, या ऐसी चीज हमारी पूरी समाज प्रायश्चित करेगी, बोले कि हमने इतनी बड़ी भूल कर दी कि हमने अपने अवतार को ही खंडित कर डाला। गलती किसी और, वो जिसने गलती की थी वो भाग गया, जबलपुर छोड़ के चला गया, गायब, फिर कभी लौटा नहीं जबलपुर। उसको लाख मनाया था लोगों ने कि ये वाक्य निकाल दो इस पत्रिका से, ये पत्रिका जैनेतरों के पास भी जाती, उसको सचेत किया था, लेकिन फिर भी नहीं माने। और वो लाइन निकाल लिख दी उनने कि राम ने, लाइन हम बता दें आपको जिसके कारण विवाद हुआ था, राम ने अंततः शिव रमणी का वरण किया। अब शिव रमणी शब्द की पता नहीं क्यों जिद की उन्होंने, उसको आप मुक्ति कह देते ना, इतना अलंकारिक लिखने की जरूरत क्या है। शिव रमणी के दूसरे अर्थ का भी तो विचार करो कि उसका दूसरा अर्थ पार्वती भी होता है, और हिंदुओं ने वही अर्थ निकाला उसका कि राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम शंकर जी की पत्नी पार्वती को वर ले, ये बात हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बोले। और इतना भड़कीला उनका भाषण हुआ, जोशीला, कि उसका परिणाम ये निकला कि मूर्ति टूट गई। और जबलपुर में आज भी लोग याद करते हैं वो उस घटना को, बरसों बीत गए, हो सकता है 30-40 वर्ष हो चुके हों, लेकिन फिर से मूर्ति स्थापित हुई आदिनाथ भगवान की, और उन्हीं के सहयोग से हुई। क्यों हुई? बस वचनों का प्रभाव था। तो वाणी के प्रभाव से बड़ा अद्भुत कार्य होता है, और कुछ नहीं, वो पूरा प्रभाव जिनवाणी का है। जिनवाणी को जिनवाणी के ढंग से अगर कोई वक्ता प्रस्तुत करे तो फिर विष भी अमृत बन जाए, और जिनवाणी को निजवाणी के रूप में जो प्रस्तुत करता है वहां अमृत भी विष बन जाता है। निजवाणी में जिनवाणी आनी चाहिए। महुआ में हो गया था ऐसा, किसी ने रामायण के ऊपर कुछ बोल दिया तो फिर पूरा चौमासा आचार्य श्री को संभालना पड़ा। ये महुआ यहाँ गुजरात में जो चातुर्मास हुआ वहां पर पूरा चौमासा आचार्य श्री को, मतलब उस पर वो ठंडी पट्टी लगाने में वो लगाना पड़ा। और फिर हम जो बतला रहे थे घटना खुरई में और रायपुर में, जब आचार्य श्री रायपुर पधारे तब हम कॉलेज के विद्यार्थी थे, और उस समय हमारी क्लासेस थी जब आचार्य श्री के प्रवचन चल रहे थे, तो हम प्रवचन तो सुन नहीं पाए जाकर, लेकिन कैसेट सुनी हमने। तो उस समय वहां पर जो विवाद हुआ था, अब क्या जैन वक्ताओं के द्वारा ही ये सब विवाद हुए हैं? तो ऐसा विवाद हो गया कि बिल्कुल जैनियों के दुश्मन बन गए थे वो। लेकिन आचार्य श्री जब पधारे वहां और उन्होंने जब व्याख्यान दिया तो इतना सुंदर व्याख्यान दिया उन्होंने कि वो सारी जो अजैन जनता थी, वो जाहिर व्याख्यान रखा था, देखो जाहिर व्याख्यान में ये होता है, गलत व्यक्ति का जाहिर व्याख्यान रख दो तो कबाड़ा हो जाए पूरा, सत्यानाश। और सही व्यक्ति का अगर जाहिर व्याख्यान हो जाए तो फिर जो काम बिगड़ा हुआ है वो सुधर जाए। इसलिए वक्ता बनने का अधिकार हर किसी को नहीं है। जैन आगम में तीन वक्ता है, चौथा कोई वक्ता नहीं जिनवाणी का। सर्वार्थ सिद्धि में अभी आने ही वाला है, चिंता मत करो। तीन वक्ता है, श्रुतम मतिपूर्वम द्वनेक द्वादश भेदम, त्रयो वक्तारः, तीन वक्ता है। उस सूत्र की व्याख्या में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, तीर्थकर इतरो केवली वाह, सबसे पहले वक्ता तो तीर्थंकर भगवान है, अथवा सामान्य केवली है, दूसरे केवली भगवान, यानी केवली की वाणी प्रथम है जिनवाणी। फिर दूसरे वक्ता श्रुत केवली च, श्रुत केवली महाराज है, श्रुत केवली भी ज्ञान के सागर है। और तीसरे वक्ता है अरातीयश्चेति, जो गणधर और प्रतिगणधरों की शिष्य परंपरा के आचार्य हैं, उन आचार्यों की जो वाणी है वो जिनवाणी है। बस ये तीन वक्ता है जिनवाणी के, चौथा कोई वक्ता नहीं है। तो आचार्य श्री ने जो वहां उपदेश दिया, हनुमान जयंती पर उन्होंने बुलाया था, लेकिन आचार्य श्री ने बोला कि मैं बाद में आ जाऊंगा, तो फिर वो हनुमान जयंती के नाम से ही प्रवचन हुआ खुरई में। और फिर उस प्रवचन में सब विवाद शांत हो गया, रायपुर के भी सारे विवाद शांत हो गए आचार्य श्री के जाने पर। बहुत एक एक शब्द ऐसा संभाल कर बोलते हैं आचार्य श्री, जब प्रसंग आता है तब, और कभी डांटना हो तो फिर तेज भी बोलते हैं। दोनों बातें आचार्य के तो अधिकार है। पूरे गुजरात में मतलब वो, अच्छा आप उस समय थे वहां, आपने सुना। तो इसलिए ये जो उपदेश का प्रसंग है उसमें थोड़ा सा ये विवेक भी होना चाहिए। और फिर ठीक है, सब जितने लोग लाभ लेते हैं सो अच्छी बात है। गीता के एक श्लोक पर हमने व्याख्यान किया था एक बार, विदिशा की बात है, तो वहाँ पर जो ब्राह्मण लोग बैठे हुए थे उनने बोला कि ऐसा अर्थ तो हमने कभी समझा ही नहीं था इसका, और वो अर्थ हमें गुरुजी ने आचार्य श्री ने बताया था। गीता के दूसरे अध्याय के कुछ श्लोक हैं, दो श्लोक हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभुः स्वभावस्तु प्रवर्तते, न कर्म फल संयोगम, न आदत्ते कस्यचित् पापम, न कस्य सुकृतम विभुः। इतना सुंदर श्लोक था, उसमें बिल्कुल उन्होंने ये मना कर दिया। गीता के अंदर ये बात लिखी है कि भगवान कुछ नहीं करते किसी का, जबकि वो गीतकारों ने क्या लिख दिया कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, और गीता में लिखा है कि फल भगवान नहीं देगा। वो सुनकर के चौंक गए, वो मिले थे बाद में। खैर ये सब बातें होती है। तो कई बार ये जो त्याग धर्म की बात चल रही थी वो ये है कि साधु क्या देते हैं दुनिया को, अच्छा अच्छा भोजन करके चले जाते हैं और फिर अपनी साधना में लगे रहते हैं। बड़े स्वार्थी हैं साधु, जनता के लिए क्या करते हैं, लेकिन नहीं, वो देश के लिए भी और फिर समाज के लिए भी। देखो उनने शाम का भोजन त्याग कर दिया आजीवन, अगर वो उतना भोजन और करते तो देश का उतना अनाज उनके शरीर के लिए और खर्च होता, लेकिन नहीं, एक ही बार भोजन लेंगे। कितना बड़ा त्याग है कल्पना करो आप, जीवन भर एक बार भोजन लेने का नियम लेना कितनी बड़ी बात है। दूसरे बार का भोजन जिसको जरूरत है वो करें, बहुत बड़ी चीज है। लाल बहादुर शास्त्री के समय भी ये घटना हुई थी, शुक्रवार को उन्होंने एकाशन कराया था पूरे भारतवासियों को, शुक्रवार को कि सोमवार को, सोमवार को, सोमवार को कि नहीं, देश में कुछ कमी पड़ रही है अनाज की, तो एक दिन सप्ताह में एकाशन करेंगे लोग, अनाज एक बार लेंगे। साधु जीवन भर एकाशन करते हैं, देश के लिए कितना बड़ा बलिदान है। वस्त्र सीमित कर लिए, जैसे तीन लिंग है जिन लिंग में, तो तीन लिंगों में क्षुल्लक अवस्था एलक अवस्था में आरिका माता जी, शुल्लिका जी, कितने सीमित है उनके पास वस्त्र, और निर्ग्रंथ मुनि ने तो वो भी छोड़ दिया। कितना बड़ा योगदान है, आप उस तरीके से विचार करो ना, ब्रॉड माइंडेड होकर के। और फिर और भी आप देखो वो क्या देते, अहिंसा का पालन करते, देख करके चलते, गाड़ियों में नहीं चलते, कितनी बड़ी बात है। फिजूल खर्ची नहीं करते, अनर्थ दंड त्याग नाम का व्रत है उनके पास, कभी फिजूल खर्ची ना करेंगे ना कराएंगे। तो इतने सब हित की बात करते हुए साधु क्या नहीं देते दुनिया को, और कभी कभी तो साधु किसी को वो चीज दे देते हैं कि उसका जीवन निहाल हो जाता है। और जिसको मिलता है वो जानता है कि गुरु का कितना उपकार है, जिसका उपकार होता है वही गुरु का महत्व पहचान सकता है, जिसका उपकार नहीं हुआ वो तो नमोस्तु भी क्यों करे, और करे तो फिर ठीक है नमोस्तु महाराज हो गया औपचारिक। जिनेंद्र वर्णी जी ने एक बार कहा था कि कुछ लोग जिनवाणी स्तुति के पहले घर चले जाते हैं, उनने बस इतना ही कहा कि भाई हम चाहे 8:30 बजे उपदेश चालू स्वाध्याय रखें या 9 बजे रखें या 8 बजे रखें, जिनको बीच में उठने की आदत है उनको तो उठ के जाना ही है, ठीक है, जिसका उपकार होगा वही तो धन्यवाद देगा। देखो कितना मीठी भाषा में, कितना शॉर्ट में कह दिया उनने। अंत में जिनवाणी स्तुति करना एक प्रकार से आभार मानना है, और आभारी कौन होता है, जिसका भला हुआ है, जिसका हित नहीं हुआ वो काय को मानेगा आभार। तो इससे सिद्ध है कि जो लोग भाग जाते हैं बीच में वो हित की तरफ नहीं है। तो तिर्यंच गति के दुख अधिक का जो वर्णन है इसमें, देखिए आप, जहां माँ भी खा जाती है बच्चे को, वहां और कौन उसकी रक्षा कर सकता है। फिर प्यास भूख की बाधाओं का भी चित्रण इसमें किया है। तीव्र तृषा से त्रिषित हो जाता है, माने प्यास लगती है। बैल को शाम को पानी मिलता है बेचारे को, जब तक काम लगा है, बीच में भले प्यास लगे उसको, गर्मी का मौसम हो, लेकिन पानी पीने नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पानी पिएगा तो काम रुक जाएगा, पानी पीने नहीं मिलेगा। भूख लगी है तो खाने नहीं मिलेगा, वो मुंह में जो बंधा है वो जब तक खुलेगा नहीं तब तक क्या खाएगा वो। तो तीव्र बुभुक्षा से बुभुक्षित होता हुआ तीव्रम दुखम पावती, तीव्र दुख को वो जानवर सहन करता है, प्राप्त होता है। प्यास की वेदना कितनी भयंकर होती है। अगर गर्मी के मौसम में एक ग्लास पानी समय पर न मिले तो कितनी तड़पन होती है, कभी एहसास किया आपने? आप घर पर हो, फ्रिज से बोतल निकाली पी लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन कभी ऐसा मौका पड़ जाए कि आपको प्यास लग रही है लेकिन कहीं व्यवस्था नहीं बन रही, ट्रेन में सफर हो रहा है, वाटर बोतल खाली हो गई, अब बताओ क्या करोगे? अगले स्टेशन की कितनी बेसब्री के साथ आप प्रतीक्षा करते हैं, कब आएगा कब आएगा। और मान लो गीतांजलि ट्रेन है, वो बहुत देर बाद रुकती है किसी स्टेशन पर, या और कोई राजधानी एक्सप्रेस या कोई ऐसी ट्रेन है कि जो छोटे मोटे स्थानों पर रुकती नहीं, तब तो लगता है कि अरे ये ट्रेन फास्ट बहुत है, लेकिन अगर पैसेंजर में चलते तो अच्छा रहता, कि कहीं ना कहीं रुकती तो बीच में जाकर स्टेशन पर पानी पीने को मिल जाता है। और पानी की एक ग्लास कितने में बिकती है स्टेशन पर बताओ? 50 पैसे, 1 रुपी, 1 रुपी। हम छोटे थे तो 5 पैसे की थी एक ग्लास। यही गुजरात की बात बता रहे हैं, यहाँ के रेलवे स्टेशन पर 5 पैसे की ग्लास मिलती थी। अभी रेट्स बहुत मल्टीप्लाई हो गए, बढ़ गए, लेकिन फिर भी प्यासा मनुष्य प्यास बुझाने के लिए सब कुछ करता है। कितनी भयंकर वेदना। और फिर उन जानवरों को तो लाचार है वो बेचारे, उनको नहीं मिल सकता पीने। गाय को जब तक मनुष्य न पिलाए पानी और खुला न छोड़े, वो क्या कर सकती बेचारी? प्यास सहन करेगी, उसके सिवाय तो कोई चारा नहीं। और भोजन मिल जाए तो मिल जाए, न मिले तो कभी कभी 3-3 दिन निकल जाते हैं, भोजन नहीं मिलता है। भूखे हैं, पसलियां दिखने लग जाती है जानवरों की, हड्डी पसली नजर आती है। आप देखिए कई जगह गायें ऐसी हैं, यहाँ की गाय तो अच्छी तगड़ी हैं वैसे गुजरात में, लेकिन कई जगह ऐसी गायें हैं कि हड्डी पसली है बिल्कुल, कुछ नहीं, ऐसे चलते चलते भी धकेल दो तो गिर जाए बेचारी, इतनी कमज़ोर है, खाने को नहीं मिलता। जहाँ अकाल पड़ता वहाँ क्या दुर्दशा होती है जानवरों की। अकाल में तो लोग जानवरों के साथ जो बर्ताव करते हैं उसका चित्रण अभी आपकी गुजराती में एक फिल्म है, मानवीनी भवाई। वो अगर मानवीनी भवाई आप देख लो तो फिर रोंगटे खड़े हो जाए। उसकी स्टोरी छोड़ दो आप, स्टोरी तो अट्रैक्टिव बना देते हैं वो जो डायरेक्टर और वो रहते हैं ना लेखक, स्क्रिप्ट राइटर होते हैं फिल्मों के, वो उसमें कोई कहानी जोड़ करके उसको ताकि लोग मजे से देखते रहें और मनोरंजन भी होता जाए। लेकिन उसमें जो चित्रण किया है कितना भयानक चित्रण है, जानवरों को वहां से शिफ्ट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर कुछ नहीं है, कहीं दूसरी जगह ले जाओ। तो रास्ते में कुछ भूखे लोग देख लेते हैं जानवरों को, वो टूट पड़ते हैं उन पर, जानवरों पर, और उन जानवरों को वहीं कच्चा खा जाते हैं। हम ये नहीं बताना चाह रहे कि मनुष्य को कितनी तकलीफ।